नमस्कार, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय श्रोताओ, इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से दूसरी पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है निर्गमन। हम आशा करते हैं कि इस पुस्तक से आपको आत्मिक लाभ मिलेगा। तो आइए, अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले आइए सुने ये मधुर गीत।
क्या ख्याल अब मेरी जिंदगी का, के जिए हमेशा तेरे लिए। मैं जिंदा रहूं या मर मिटूं, ये जिंदगी तेरी मसीह। ऐ मेरे मसीह, ऐ मेरे तुझे चाहना क्या बात है, तुझे चाहना क्या बात है। ऐ मेरे मसीह, ऐ मेरे खुदा।
प्रिय मित्र, आप सबों को प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम में मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब प्रभु की दया से कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी प्रभु के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि इस अध्ययन के द्वारा आप भरपूर आनंद प्राप्त करेंगे। इस श्रृंखला में आज के विषय से मैं आपको परिचित कराता हूं, और आज के विषय कुछ इस प्रकार से हैं। इसराइली सीनै पर्वत के निकट आते हैं और मूसा परमेश्वर का संदेश लोगों तक पहुंचाते हैं। इसके प्रत्युत्तर में लोग तीसरे दिवस के दिन अपने को तैयार करते हैं, और यह वह दिन है जब परमेश्वर सीनै पर्वत पर इसराइली लोगों के सम्मुख उतरेंगे। परंतु पर्वत पर परमेश्वर के उतरते समय लोगों को सावधान रहने को कहा गया कि वे सीमांत रेखा को स्पर्श न करें। प्रिय मित्रों, आपको स्मरण रखना चाहिए कि निर्गमन अध्याय 19 से 24 अध्याय तक विधान या वाचा या व्यवस्था का विवरण मिलता है। इसराइली जाति सीनै पर्वत तक पहुंच चुकी है और वहां वाचा के माध्यम से उनका संबंध जुड़ता है और वे नियम को स्वीकार कर लेते हैं। वास्तव में यह उनका अनुग्रह और विधान के बीच एक लेन देन है। हम आगे देखते हैं इसराइलियों का सीनै पर्वत पर पहुंचना। हम निर्गमन की पुस्तक 19 अध्याय उसके 1-2 पद में इस प्रकार से पढ़ते हैं, इसराइलियों को मिस्र देश से निकलते हुए जिस दिन 3 महीने बीत चुके उसी दिन वे सीनै के जंगल में आए, और जब वे रफीदीम से कूच करके सीनै के जंगल में आए तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए और वहीं पर्वत के आगे इसराइलियों ने छावनी डाली। मित्रों, इसराइली लोग सीनै के निर्जन प्रदेश के पर्वत के पास पहुंचे जहां उन्हें विधान अर्थात व्यवस्था दिया गया। परमेश्वर अपने निज लोगों से दयालुता का व्यवहार करते हैं और एक निर्णय का अवसर प्रदान करते हैं कि परमेश्वर ने मिस्र देश से निकलने के बाद सीनै पर्वत तक पहुंचने में जो अगुवाई की वह उन्हें पसंद आई अथवा उन्हें विधान या वाचा को पालन करना स्वीकृत होगा। आगे हम देखते हैं मूसा का परमेश्वर के संदेश को देना तथा लोगों का प्रत्युत्तर। हम निर्गमन की पुस्तक 19 अध्याय उसके 3-4 पद में पढ़ते हैं, तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कह और इसराइलियों को मेरा यह वचन सुना कि तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, तुमको मानो उका पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं। मित्रों, यह यात्रा अनुग्रह की है। फिर हम आगे 19 अध्याय उसके 5 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा को पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे, समस्त पृथ्वी तो मेरी ही है। इसराइली लोगों की यात्रा मिस्र के सीनै पर्वत तक परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा संपन्न हुई। मित्रों, परमेश्वर ने उन्हें स्मरण दिलाया कि उसने किस प्रकार मिस्र निवासियों के साथ व्यवहार किया और किस प्रकार उन्हें उकाब की तरह सुरक्षित पंखों पर बैठाकर यहां तक पहुंचाया है। प्रियो, आप जानते हैं कि उकाब या बाज एक शिकारी पक्षी है। अय्यूब की पुस्तक 9 अध्याय उसके 26 पद में बड़ी सुंदर परिकल्पना दी गई है, जिस वेग से बाज अपने शिकार पर झपटता है। मित्रों, प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, जहां कहीं लाश होगी वहां गिद्ध इकट्ठे हो जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय उसके 28 पद में हम पाते हैं, तो भी उकाब अर्थात बाज की उपमा धर्मशास्त्र में ईश्वरत्व के चिन्ह रूप में की गई है। जैसे यजेकेल की पुस्तक में गरुड़ पक्षी का चेहरा व प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 4 अध्याय में उड़ते हुए उकाब पक्षी का वर्णन है। इस पक्षी की सराहना की जाती है उसके बुलंदियों की उड़ान तथा तीक्ष्ण दृष्टि और एक मजबूत पंखों के लिए। इसलिए परमेश्वर ने निर्गमन की पुस्तक 19 अध्याय के 4 पद में कहा, तुमने देखा कि मैंने मिस्र निवासियों के साथ क्या क्या किया, किस प्रकार तुम्हें बाज के पंखों पर बैठाकर अपने पास तक ले आया। मित्रों, यही परमेश्वर का अद्भुत अनंत आश्चर्यजनक अनुग्रह है। इसी अनुग्रह से परमेश्वर मिस्र से बाहर निकाला, इस्राएली लोगों को सीनै पर्वत तक लाया। परमेश्वर ने उन्हें असहाय और मिस्र की गुलामी में आशाहीन पाकर निकाल लिया। उसने उन्हें लहू से छुड़ाया क्योंकि उसी रात प्रभु का दूत मिस्र निवासियों का वध करने के लिए वहां से होकर जाएगा। मित्रों, जब वे लाल सागर के पार उतरे जहां फिरौन उन्हें भेड़ बकरियों के समान वध करने आया था, परंतु परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया और परमेश्वर उन्हें अपनी शक्ति के बल पर लाल सागर के पार ले गया। आप यहां पर देख सकते हैं कि वह उन्हें उकाब के पंखों पर ले चलता है। मिस्र से सीनै पर्वत तक के मार्ग में परमेश्वर ने इसराइल के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति की। वे 7 अनुभव प्रदान करते हैं। इसराइली जब भूखे थे तब परमेश्वर ने उसे मन्ना खिलाया, जब प्यासे थे तब उन्हें पानी पिलाया, मारा के पानी को मीठा किया, अमालेक से उनका छुटकारा किया। सारे रास्ते भर प्रभु उन्हें उकाब जैसे पंखों पर उड़ाता रहा। मित्रों, इसी प्रकार वह आज भी हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार करता है। वह अपने अनुग्रह के तले हमारी अगुवाई करता है और हम विश्वास से उसके पीछे चलते हैं। सीनै पर्वत से अब परमेश्वर इसराइलियों को स्मरण कराते हैं कि कैसे उसने उनकी अगुवाई की और उनकी परवाह भी की। अब वह उन्हें एक चुनाव करने को कहते हैं, अनुग्रह अथवा आज्ञा या विधान। परमेश्वर उनसे पूछते हैं कि क्या तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, क्या तुम मेरी वाचा का पालन करोगे। उन्हें अनुग्रह व आज्ञाओं के बीच आदान प्रदान करना है। अनेक लोग आज भी ऐसा ही करते हैं। यह दुर्भाग्य की बात है क्योंकि वर्तमान में हम परमेश्वर के अनुग्रह से बचाए जाते हैं, व्यवस्था के द्वारा नहीं। विधान एवं अनुग्रह के बीच कितनी दूरी है। विधान मांग करता है, अनुग्रह प्रदान करता है। यहां पर विधान का मतलब व्यवस्था है। व्यवस्था कहता है करो, अनुग्रह कहता है विश्वास करो। व्यवस्था सटीक है, अनुग्रह अर्पित है। व्यवस्था श्रम करने को कहता है, अनुग्रह विश्राम करने को। व्यवस्था धमकी देता है और श्रापित करता है, अनुग्रह विनती करता और आशीष देता है। व्यवस्था कहता है करो और जीवित रहो, अनुग्रह कहता है जियो और कार्य करो। व्यवस्था उत्तम मनुष्य को भी दंडित करता है, अनुग्रह सबसे बुरे व्यक्ति अर्थात दुष्ट का भी बचाव करता है। मित्रों, व्यवस्था द्वारा परमेश्वर के चरित्र का प्रदर्शन होता है और साथ ही मानव की दुर्बलताओं को भी उजागर करता है। रोमियों की पत्री 3 अध्याय उसके 19 पद में पौलुस का कथन इस प्रकार से है, जहां पर लिखा है, हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। मित्रों, परमेश्वर ने वाचा उद्धार के साधन के रूप में नहीं दिया। इसका एक भी उदाहरण उपलब्ध नहीं है। मूसा हत्यारा था, उसने क्रोधित होकर ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, तब फिर क्यों यह नियम अर्थात व्यवस्था उसे दिया गया। उसका एक निश्चित कारण था जिसका उल्लेख गलतियों की पत्री उसके 3 अध्याय और उसके 19 पद में हुआ है। तब व्यवस्था का प्रयोजन क्या है। जिस वंशज की प्रतिज्ञा दी गई थी उसके आने के समय तक व्यवस्था अपराधों के कारण जोड़ दी गई थी। वाचा यह प्रकट करने के लिए दिए गए कि हम सब पापी हैं। यह वंशज के आने तक अल्पकालीन थी। वंशज का अर्थ प्रभु यीशु ख्रीस्त से है। पौलुस गलातियों के पत्र 3 अध्याय उसके 24 पद में कहते हैं, इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरें। मित्रों, शिक्षक का अर्थ मूल संदर्भ के संरक्षण में अर्थात किसी कुलीन रोमी का गुलाम जिसके जिम्मे बालक की पूरी परवाह करना है, कपड़े पहनाना, धोना, तैयार करना और नाक आंख से पानी आने पर उसे भी पोंछना, हाथ पकड़कर साइकिल तक चलाना, जब तक बालक बड़ा होता है तो उसे स्कूल तक ले जाना व लाना भी। यूनानी भाषा में शब्द पेटागोग प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ उपयुक्त ही है, छोटे बच्चे को हाथ पकड़कर स्कूल ले जाने वाला। व्यवस्था शिक्षक है, वह एक छोटे बालक की तरह हाथ पकड़कर क्रूस तक ले जाने में हमारी अगुवाई करता है, तब कहता है, मेरे छोटे बालक तुम्हें एक मुक्तिदाता की आवश्यकता है, तुम पापी हो और तुम्हें उद्धार प्राप्त करना चाहिए। हम निर्गमन की पुस्तक 19 अध्याय उसके 6 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इसराइलियों से कहनी है वे ये ही हैं। मित्रों, परमेश्वर की मौलिक इच्छा इसराइली लोगों को पुरोहितों का राज्य बनाने का था, सभी जातियां जो पुरोहित वर्ग में रखे गए, परंतु कादेश बर्निया के प्रदेश में प्रवेश पाने की असफलता तथा मूसा के पर्वत पर जाने के बाद एक बछड़े की प्रतिमा अर्थात मूर्ति बना लेने के कारण यह उपाधि या खिताब केवल एक जाति जो लेवी कहलाती है, जो पुरोहित है, उसे यह पद प्राप्त हो सका। परमेश्वर का अंतिम लक्ष्य सहस्त्राब्दी अर्थात स्वर्ण युग में संपूर्ण राष्ट्र को पुरोहित का राज्य बनाने का है। यह तभी संभव होगा जब कलीसिया पृथ्वी पर से उठकर स्वर्ग में प्रभु यीशु के साथ नए यरूशलेम में निवास करेगी। हम निर्गमन की पुस्तक 19 अध्याय और उसके 7 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, तब मूसा ने आकर लोगों के पुरनियों को बुलवाया और ये सब बातें जिनके कहने की आज्ञा यहोवा ने उसे दी थी उनको समझा दी। मित्रों, इन लोगों की सुने कि उनका कितना सुदृढ़ विश्वास था। आगे पढ़ते हैं, निर्गमन 19 उसके 8 पद में लिखा है, और सब लोग मिलकर बोल उठे, जो कुछ यहोवा ने कहा है वह सब हम नित करेंगे। लोगों की यह बातें मूसा ने यहोवा को सुनाई। सीने पर्वत पर इसराइल राष्ट्र को व्यवस्था का दिया जाना विधान का एक नया वितरण था। यह व्यवस्था अवधि सीने पर्वत से कलवरी क्रूस तक तथा निर्गमन से क्रूस तक की थी। यह उन लोगों के लिए एक नया प्रकाशन है जो आदर्श परिस्थितियों में रहते हैं अर्थात उसमें रहते हुए भी वाचा का पालन नहीं कर सकते हैं। लोगों ने कहा, जो वचन प्रभु ने कहे हैं हम उसका पालन करेंगे। उन्होंने इन वचनों को जानने से पहले ही यह कहा था। इसके बाद लगभग 1500 साल तक भी वे इस वाचा का पालन करने में असफल रहे। आज भी अनेक लोगों की दृष्टिकोण कुछ ऐसी ही है। उनके विचार से स्वाभाविक मनुष्य परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है, स्वाभाविक मनुष्य वाचा का पालन नहीं कर सकता। ऐसा करने में वह निरंतर असफल ठहरता है। व्यवस्था इसलिए दिया गया कि स्वाभाविक स्वभाव को संयम में रखे, परंतु ऐसा नहीं हुआ क्योंकि पुराना मनुष्यत्व या स्वभाव क्रांतिकारी है, जिसे दबाया नहीं जा सकता। पौलुस रोमियो के पत्र 8 अध्याय उसके 6 और 7 पद में इस प्रकार वर्णन करते हैं, क्योंकि जो शारीरिक स्वभाव से संचालित हैं, वे शारीरिक आचरण की बातों की चिंता करते हैं और इसका परिणाम जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। मित्रों, मेरे और आपके अंदर भी पुराना स्वभाव है। यह परमेश्वर से बैर रखने के समान है। यह परमेश्वर का आज्ञाकारी नहीं होता और न ही परमेश्वर को प्रसन्न रख सकता है। मित्रों, क्या आपने अपने जीवन में इसकी खोज की है? क्या आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि परमेश्वर के मानक स्तर बनाए रखने में आपसे चूक हुई है? इसराइल पर दृष्टि डालें। परमेश्वर उन्हें व्यवस्था सौंपते हैं और उनका कथन है, उसे हमें दीजिए, हम पालन करने को तैयार हैं। यह आत्मविश्वास और अहंकार का कैसा अद्भुत प्रदर्शन है। तो भी आज करोड़ों पुरुष एवं महिलाएं दावा करते हैं कि वे व्यवस्था का पालन करते हैं, यद्यपि परमेश्वर ये स्पष्ट बताते हैं कि मानव व्यवस्था का पालन नहीं कर सकता है और न ही व्यवस्था उसका बचाव कर सकता है या उद्धार कर सकता है। निश्चित रूप से कोई भी पूर्णतः पालन नहीं करता। इसका प्रमाण इसराइली राष्ट्र है, जो आदर्श परिस्थितियों में भी इसे पूरा नहीं कर सका। परमेश्वर से भेंट के लिए इसराइल की तैयारी, हम निर्गमन की पुस्तक 19 अध्याय और उसके 9 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं बादल के अंधियारे में होकर तेरे पास आता हूँ, इसलिए कि जब मैं तुझसे बातें करूँ तब वे लोग सुने और सदा तेरी प्रतीति करें। और मूसा ने यहोवा से लोगों की बातों का वर्णन किया। मित्रों, अनेक लोगों का मानना है कि व्यवस्था का दिया जाना एक सुंदर आकर्षित घटना थी। डॉक्टर मैगी का कथन है कि अनेक वर्ष पूर्व एक सम्रांत महिला ने उनसे प्रश्न पूछा, मिस्टर मैगी, क्या आप ऐसा नहीं सोचते कि व्यवस्था का दिया जाना पवित्र बाइबल की सबसे सुंदर और मधुर घटना है? मेरे इस जवाब को सुनकर वह स्तब्ध रह गई। कदापि नहीं, मेरे विचार से इस घटना में कोई मधुरता एवं सुंदरता नहीं, वह तो सबसे भयभीत और आतंकित करने वाली घटना है। हम आगे पढ़ते हैं निर्गमन 19 अध्याय के 10 और 11 पद में, तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना, और वे अपने वस्त्र धो लें और वे तीसरे दिन तक तैयार रहें, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों के देखते सीनै पर्वत पर उतर आएगा। मित्रों, यह कितना विस्मयकारी और भयंकर दृश्य है जिसे हम ध्यान से सुन सकते हैं। हम निर्गमन 19 के 12 पद में आगे पढ़ते हैं, लिखा है, और तू लोगों के लिए चारों ओर बाड़ा बांध देना और उनसे कहना कि तुम सचेत रहो कि पर्वत पर न चढ़ो और उसके सिवाने को भी न छुओ, और जो कोई पहाड़ को छुए वह निश्चय मार डाला जाएगा। मित्रों, यहां पर इस वचन के द्वारा से क्या कोई सुंदर दृश्य सुनाई पड़ता है? इसराइली लोगों को चेतावनी दी गई कि पर्वत के निकट ना आए और न ही उसके सीमांत को स्पर्श करें, अन्यथा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। मित्रों, क्या आपको यह सुंदर लगता है? यह तो भयंकर बात है। हम निर्गमन 19 अध्याय उसके 13 से 16 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, उसको कोई हाथ से तो न छुए, परंतु वह निश्चय पत्थरवाह किया जाए, वह तीर से छेदा जाए, चाहे पशु हो चाहे मनुष्य, वह जीवित न बचे। जब महाशब्द वाले नरसिंह का शब्द देर तक सुनाई दे, तब लोग पर्वत के पास आए। तब मूसा ने पर्वत पर से उतरकर लोगों के पास आकर उनको पवित्र कराया और उन्होंने अपने वस्त्र धो लिए, और उसने लोगों से कहा, तीसरे दिन तक तैयार हो रहो, स्त्री के पास न जाना। जब तीसरा दिन आया तब भोर होते बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंह का शब्द बड़ा भारी हुआ और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। मित्रों, यह कोई सर्कस परेड का मनोरंजन नहीं हो रहा था, परंतु परमेश्वर के वाचा को दिया जाना था। लोगों के लिए आश्चर्यजनक अनुभव तथा दिल दहलाने वाली भयंकर भयभीत घटना थी। हम निर्गमन की पुस्तक 19 अध्याय के 17 पद से 21 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए छावनी से निकाल ले आया और वे पर्वत के नीचे खड़े हुए, और यहोवा जो आग में होकर सीनै पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्ठे का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। फिर जब नरसिंह का शब्द बढ़ता और बहुत भारी होता गया, तब मूसा बोला और परमेश्वर ने वाणी सुनाकर उसको उत्तर दिया, और यहोवा सीनै पर्वत की चोटी पर उतरा और मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया और मूसा ऊपर चढ़ गया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर के लोगों को चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे बाड़ा तोड़ के यहोवा के पास देखने को घुसें और उनमें से बहुत नाश हो जाएं। मित्रों, कुछ इसराइली समझते थे कि इस घटना में उन्हें आश्चर्यजनक बातें देखने को मिलेंगी, परंतु ऐसा नहीं होगा। उन्हें केवल शब्द अर्थात आवाज सुननी पड़ेगी, और यह बात आज भी सत्य है। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया, जिसे हम यूहन्ना के सुसमाचार के 1 अध्याय और उसके 18 पद में पाते हैं। आगे हम पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक 19 अध्याय उसके 22 से 25 पद में, और याजक जो यहोवा के समीप आया करते हैं वे भी अपने को पवित्र करें, कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा उन पर टूट पड़े। मूसा ने यहोवा से कहा, वे लोग सीनै पर्वत पर नहीं चढ़ सकते, तूने तो आप हमको यह कहकर चिताया है कि पर्वत के चारों ओर बाड़ा बांधकर उसे पवित्र रखो। यहोवा ने उससे कहा, उतर तो जा और हारून समेत तू ऊपर आ, परंतु याजक और साधारण लोग कहीं यहोवा के पास बाड़ा तोड़ के न चढ़ जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि वह उन पर टूट पड़े। ये ही बातें मूसा ने लोगों के पास उतर के उनको सुनाई। मित्रों, इसराइली लोगों को यदि उनकी सीमाओं और दुर्बलताओं को समझने की क्षमता होती तो शायद वे कभी भी व्यवस्था के पालन करने को प्रण नहीं करते। व्यवस्था के वितरण और हमारे अनुग्रह के विधान युग के अंतराल में भारी अंतर है। मित्रों, यहाँ पर हमारा समय समाप्त होता है, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस वचन के द्वारा अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किए होंगे। मित्रों, हमारे लिए भी एक सबक है कि यदि हम परमेश्वर से कुछ वायदा करते हैं तो निश्चित रूप से मुझे और आपको उसका पालन करना है। इस प्रकार नहीं जैसे इसराइलों ने किया, उन्होंने वायदा तो किया लेकिन वे सफल न हुए और उन्हें दंड भोगना पड़ा। मित्रों, आज मेरे लिए और आपके लिए भी एक समय है कि हम परमेश्वर के सामने अपनी हर एक कमजोरियों को माने और इस बात को स्वीकार करें कि हम व्यवस्था के द्वारा उद्धार नहीं पा सकते हैं, सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही उद्धार पा सकते हैं जो हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त होता है। आइए हम आज के इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करें। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको बहुतायत से आशीष दे।
श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
सिखा मुझको यीशु, बता।